SBS के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारत और जापान के बीच 14वां द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन शनिवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि जापान ने भारत में अपना निवेश बढ़ाकर 5 मिलियन येन यानी 3.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो वह अगले 5 वर्षों के दौरान करेगा।
हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानी येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। अब हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
इस समझौते के तहत जापानी कंपनी सुजुकी इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी बनाने के लिए गुजरात में सन 2026 तक 10,445 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र समेत कई सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। ज्ञात रहे कि जापान और भारत क्वाड सुरक्षा डायलॉग का हिस्सा हैं, जिसके अन्य दो सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और जापान ने यूक्रेन में बढ़ते हमलों के प्रति चिंता भी व्यक्त की और हिंसा के फौरन रोके जाने की मांग की। इस बारे में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी देते हुए बताया,
Essentially, the Prime Minister expressed their seriousness about the ongoing conflict and the humanitarian crisis in Ukraine, assessed its broader implications, particularly for the Indo-Pacific region. They emphasized that the contemporary global order had been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. They underscored the importance of safety and security of nuclear facilities in Ukraine. And acknowledged active efforts by the IAEA towards it. They reiterated their call for an immediate cessation of violence and noted that there was no other choice but the path of dialogue and diplomacy for the resolution of the conflict. The leaders affirmed that they would undertake appropriate steps to address the humanitarian crisis in Ukraine.
इस शिखर सम्मेलन के फौरन बाद आज 21 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच दूसरी वर्चुअल समिट होगी, जिसमें सामरिक, आर्थिक, साइंस और तकनीकी महत्व के मुद्दों के साथ साथ यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी। इसी हफ्ते अमेरिका से 3 सदस्यों का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी भारत का दौरा कर रहा है। इस शिष्टमंडल में राजनीतिक मामलों की अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नूलैंड, डिफेंस पॉलिसी की अंडर सेक्रेटरी अमांडा डोरी और दक्षिण और सेंट्रल एशिया के जानकार डोनाल्ड लू शामिल होंगे। इन मुलाकातों को रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत गिनती के उन चंद देशों में शामिल है जो इस युद्ध के दौरान रूस की निंदा करने से बचते रहे हैं। भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश भी है। भारत द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों में 46% हथियार रूस के ही हैं। हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इस संबंध में एक व्यक्ति को तमिलनाडु में गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच करने और तमिलनाडु में गिरफ्तार किए गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए कहा है।
इतना बड़ा गंभीर व्यक्ति तेज कुंडे नानू नम डी जी और आदेश कोट्देने गमन पो नम विधानसौ केसन कूडले तनिखे मतलब अली तमिलनाडली ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಏನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಈಗಿರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ವೈ ಕೆಟಗರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೇರಳ ಕಿ ರಾಜಧಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮೇ ಚಲ್ ರಹೆ ಕೇರಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಹೋತ್ಸವ IFFK ಮೇ ಏಷ್ಯಾ, ಅಫ್ರೀಕಾ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಔರ್ ಯುರೋಪ್ ಕೆ ಕೈ ದೇಶೋ ಸೆ ಆಯಿ 180 ಫಿಲ್ಮೇ ದಿಖಾಯಿ ಜಾ ರಹಿ ಹೈ ಜಿನ್ಕಿ ಸಬ್ ಓರ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ಇಸ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ISIS ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೈವರ್ ತುರ್ಕಿ ಕಿ ಯುವ ಕುರ್ದ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೀಸಾ ಕ್ಯಾಲೆನ್ ಹೈ. ISIS ಕೆ ಆತ್ಮಘಾತಿ ಹಮಲೆ ಮೇ ಇನ್ಹೊನೆ ಅಪ್ನೆ ದೋನೋ ಪೈರ್ ಖೋ ದಿಯೆ ಥೆ, ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ಕೆ ಬಾವಜೂದ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಹಿ ಹಾರಿ ಔರ್ ಕೃತ್ರಿಮ್ ಅಂಗೋ ಕಿ ಮದದ್ ಸೆ ಅಪ್ನೆ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಯಾಸೋ ಕೋ ಪುನರ್ಜೀವಿತ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಕಾಮಯಾಬಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕಿ. IFFK ಮೇ ಉನ್ನೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸಿನೆಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆ ಸಮ್ಮಾನಿತ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಮೇ ಬನಿ ಪಹಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಭೀ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮೇ ದಿಖಾಯಿ ಗಯಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಔರ್ ಖಾಸ್ಕರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಕಿ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ಜೋ ಖುದ್ ಏಕ್ ರೇಪ್ ಸರ್ವೈವರ್ ರಹಿ ಹೈ ನೇ ಲೀಸಾ ಕ್ಯಾಲೆನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ದೀಪ್ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ದರ್ಶಕೋ ಕೋ ಸಂಬೋಧಿತ್ ಕಿಯಾ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 26th ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂದು ಭಾಗಮಾವಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಒರುಪಾಡ್ ಸಂತೋಷ. ಅದಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕೊರು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ച രഞ്ജിത് സാറിനും ബീന ചേച്ചിക്കും എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. നല്ല സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കും നല്ല സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും, ലിസയെ പോലെ എല്ലാ ഓഡ്സിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ മേ ബതോർ മുഖ്യ അതിഥി ആയ ബോളിവുഡ് സിനിമാക്കെ ബഹുചർച്ചിത് നിർദ്ദേശക് അനുരാഗ് കശ്യപ് നെ മലയാളം സിനിമാ മേ ഹോ രഹേ കാം കി സരാഹനാ കി.
My closest collaborators are from Kerala. My partners in crime, my friends. In a time like in India, I make movies in Hindi. And where we are distorting our history, Kerala is actually chronicling the times we live in with their cinema. So it's so great to be here. And today, I think the best of Indian cinema is coming from God's own country. And it's so inspiring that not just the experimenting with the art form where they should in the mainstream as well. So, and it's so rooted and you get a sense of time and place and everything when you watch the film.
Aur ab pesh hain khel jagat ke samachar. भारत के लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल्स में पहुंचने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने मलेशिया के ली जी जिया को कड़े संघर्ष के बाद 21-13, 12-21, 21-19 से हरा दिया. लेकिन वे अपने जीत के सिलसिले को बरकरार नहीं रख सके और भारतीय समय के अनुसार रविवार देर रात खेले गए फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेलसन से सीधे सेटों में 10-21, 15-21 से हार गए. हालांकि पिछले हफ्ते ही सेन ने एक्सेलसन को जर्मन ओपन में हराया था. लेकिन 53 मिनट चले इस मुकाबले में लक्ष्य सेन अपने फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए. इस हार के बावजूद लक्ष्य सेन के खेल में पिछले एक साल में ज़बरदस्त निखार आया है और उनकी गिनती दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में होने लगी है. इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए. नमस्कार.